Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक कुमार विजय. विजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज एंड स्ट्रांग टुडे. सेंसेक्स एंड निफ्टी राइज ओवर 0.75% ईच टू हिट फ्रेश क्लोजिंग हाइज. Foreign exchange reserves jumped $5.16 billion to $657.16 billion as of July 5, says RBI data. And crude oil prices are trading higher today. Brent crude increases by 0.74% while WTI goes up by over 1%.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का दौर. सेंसेक्स और निफ्टी 0.7% के उछाल से नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज. 5 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 657 अरब 16 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी. ब्रेंट क्रूड में 0.7% और WTI में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज. घरेलू शेयर बाजार में आज मजबूती का दौर रहा. कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में नए रिकॉर्ड स्तर भी दर्ज हुए. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.8% की कुल बढ़त से 622 अंक उछलकर 80,519 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की मजबूती से 186 अंक बढ़कर 24,502 के नए स्तर पर बंद हुआ. हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट भी दर्ज हुई.
इंडियन बेंचमार्क इंडिसीज एंडेड स्ट्रांग टुडे, प्राइमरी लेड बाय गेन्स इन द आईटी स्टॉक्स. सेंसेक्स निफ्टी रोज नियरली 8% ईच टू हिट फ्रेश ऑल टाइम हाईज इन इंट्राडे ट्रेड. At close, Nifty 50 jumped by 186 points, 0.77% to settle at a fresh closing high of 24,502. Sensex also settled at its fresh closing high of 80,519 with a gain of 622 points, or 0.78%. In the BSE, a pack of 30 companies, 285 companies hit their 52-week high, 21 companies hit their 52-week low. 20 out of 30 companies registered gains in the Sensex. Meanwhile, in the Nifty index, a share of 34 companies advanced, whereas shares of 16 companies declined. In the broader market, at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index was down by 0.22%, while the small-cap index fell by 0.13%. The top three gainers today were TCS, which went up by 6.68%, Wipro was up by 4.81%, and Infosys went up by 3.57%. Conversely, the three major laggards are Maruti, which fell by 1%, Coal India fell by 0.79%, and Asian Paints fell by 0.79%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 out of the 20 sectors logged losses. The top three gainers were information technology, which went up by 4.32%, tech went up by 3.29%, On the other hand, the three major laggards were realty, which fell by 1.56%, auto fell by 0.53%, and utilities fell by 0.48%.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83.53 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. मिस्टर विजय, बाजार में आज वापस से उछाल और एक नया जो मजबूती का दौर नजर आ रहा है, और एक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को देखें नेट नए रिकॉर्ड बना रहा है, कितनी संभावना जताते हैं? क्योंकि इस ऊंचे स्तर पे कहीं ना कहीं एक आम निवेशक जो इस तेजी की दौर में शामिल होना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब स्पेकुलेशन का दबाव तो नहीं है, या ये मानने के पर्याप्त कारण है कि हमारी जो पहली तिमाही की कंपनी जगत के नतीजे हैं वो बेहतर आने वाले हैं, और बाजार को आने वाले बजट से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं?
अगर पिछले एक महीने में आप देखें, एक महीने से ज्यादा का समय में, तो बाजार सिर्फ ऊंचाई को ही छू रहा है और नित्य नए एक हाइट बनाता जा रहा है, और अभी आगे ही हाइट बनाएगा. जैसे आप जुलाई 23 को बजट है और ये मंथ आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट का भी मंथ है, जिसमें अभी आप जो पढ़ रहे थे उसमें टेक कंपनीज जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो बहुत से बैंक अभी अपनी ऊंचाई पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उम्मीद है बाजार में और उम्मीद के कारण इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं और वो इन्वेस्टर को लग रहा है कि अभी इसमें पोटेंशियल हाई है और वो बने रहना चाहते हैं मार्केट में, इसीलिए मार्केट नित नया एक ऊंचाई बना रहा है। हां, इसमें जरूर है संभलने की जरूरत है क्योंकि हर सेक्टर आगे नहीं जाएगा। और सेकेंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कौन सा सेक्टर है या कौन सा ऐसा स्क्रीप है जो अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है, अगर उससे ज्यादा पिघड़ जाते हैं उसके गिरने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जिस तरीके से मार्केट में एक बेसिक इंडिकेटर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो 30 में से 20 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कोई नैरो इंक्रीमेंट नहीं है, शॉर्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट में भी पोटेंशियल है। लेकिन कितना पोटेंशियल है और कब तक ये कंटिन्यू करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए खास करके स्मॉल इन्वेस्टर को ये सलाह दी जाती है कि वो सतर्क होकर और सिर्फ उन सेगमेंट में इन्वेस्ट करें जिस सेगमेंट में लॉन्ग टर्म की एडवाइस होती है।
जागरूक रहें
और सतर्क रहें
जी। साथ ही साथ अगर आज देखें जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पे थोड़ी सी गिरावट भी नजर आ रही है।
गिरावट नहीं, इसको आप थोड़ा सा सुधार कहिएगा, करेक्शन फेज होता है और ये मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन होकर मार्केट मूव करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने आप को जज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह का मूवमेंट देखिए, जब तक 1% या 1% से नीचे का मूवमेंट जो है उस मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होने की जरूरत है। उससे बड़ा अगर मूवमेंट इधर साइड हो जाए तो वो मूवमेंट फिर सतर्क होने के लिए एक सिग्नल देता है।
तकरीबन 24,500 पे जब अगर निफ्टी आता है तो अब इसके बाद के स्तर, एक विश्लेषक के तौर पे आप क्या मानते हैं कि क्या बाजार को अभी भी बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जो इतना भरोसा बना हुआ है, या इस भरोसे के पीछे कुछ और कारण है जिसपे हमको चिंता और सतर्क रहने की जरूरत है?
बाजार में अभी अगर सिर्फ बजट की बात करेंगे तो बजट में दो चीजें हैं। एक बजट में ये बताया जा रहा है, अगर थोड़ा सा दो आस्पेक्ट देखें, पहला आस्पेक्ट है कि जब ये गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में जा रही थी तो उस समय जो फरवरी में इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, इंटरिम बजट, उस बजट में भी इन्होंने कैपेक्स का बहुत अच्छा सिग्नल दिया था। और अभी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है, वहां भी सिग्नल जो मिल रहा है वो सिग्नल कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, लॉन्ग टर्म की तरफ है। अगर लॉन्ग टर्म का अगर बजट प्रपोजल आता है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स की तरफ होगा वो हाई होगा और वो इकोनॉमी को इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन में मार्केट में पोटेंशियल होता है और मार्केट और उसको एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह ऊपर की तरफ ले जाएगा।
विजय, टेल अस अबाउट द आईटी सेक्टर, इट वेंट अप बाय 4.5% टुडे। वी नो दैट ऑन 11th ऑफ जुलाई TCS came up with favorable results in its first quarter. Net profit went up by 8%. On July 18, Infosys is expected to declare its first quarter results. What is this indicating in terms of the IT sector, in terms of exporting services for India?
It's basically, if you look upon TCS, the largest IT company of India, especially if you look into the volume and business wise, it is really one of the indicator itself in the economy, Indian economy, and it has got a huge potential of the revenue generation out of India
in foreign exchange.
That's correct, in foreign exchange. So that simply indicates that India has got a lot of order entries available with these companies, and which is nothing but a kind of a very strong opportunity in revenue sense.
लेकिन विजय, एक चीज पीछे देखी जा रही थी, खासतौर पर आईटी सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में जो वैश्विक स्तर पे जो गतिविधियां और जो परिस्थितियां बनी हुई थी वहां से उम्मीदें कम जग रही थी, तो ऐसी कंपनियों से भी खबरें भी आ रही थी कि वो नए रोजगार में या नई भर्तियां भी नहीं कर रहे हैं। क्या ये संभल के चढ़ने की कंपनियों की एक पॉलिसी है, या ये भी माना जाए कि क्योंकि वो अपने भविष्य के व्यापार के प्रति या काम के प्रति थोड़ा आशंकित हैं?
देखिए, जब आप यूएसए और यूरोपियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी,
क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इनको काम आता है,
बिल्कुल काम आता है। अगर टीसीएस का दोनों मार्केट, खास करके यूरोप मार्केट टीसीएस का बहुत स्ट्रांग मार्केट है, इवन एशियन मार्केट भी कई हैं, ये टीसीएस के लिए एक स्ट्रांग मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जिस ट्रबल से उनकी इकोनॉमी गुजर रही है उनको रिवैम्पिंग चाहिए। अभी इलेक्शन में भी देखे हैं, यूके के इलेक्शन को अगर देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि वहां के भी लोगों को अभी एक छटपटाहट है कि कुछ बदलाव हो, और उस बदलाव इसलिए नहीं बदलाव है कि बदलाव चाहिए, बदलाव से सुधार की उम्मीद है। और वो सुधार की उम्मीद में अभी इंडिया जिस स्ट्रेटेजिक पोजिशन पे है, ये इंडिया के लिए भी और इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहे वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, इवन सम अदर एशियन इकोनॉमीज, उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि वो इंडिया के पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़े। और उसमें आईटी का सेगमेंट जो है इंडिया का, खास करके सॉफ्टवेयर, वो इंडिया का ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड वेल रिनाउंड एंड प्रीमियम प्रोडक्ट है। इस प्रीमियम प्रोडक्ट को हर कोई लेना चाहता है और इंडिया एक्सपैंड भी कर रहा है। इंडिया ने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया है। इट इज नॉट कन्फाइंड एनी मोर ओनली टू यूएस और यूके इकोनॉमी। वो अपने पोर्टफोलियो पे इतना आगे बढ़ रहा है कि छोटी छोटी इकोनॉमी को भी जब आप लेते हैं, सूडान और और मिडिल ईस्ट के अदर कंट्री या तंजानिया टाइप की अगर इकोनॉमी को अगर टीसीएस अगर संभाल रहा है, दे रहा है सर्विस, इसका मतलब है कि इंडिया के पास वो छोटे छोटे पोर्टफोलियो से बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है।
विजय, टेल अस अबाउट द एफआईआई एक्टिविटी टुडे। दे वर नेट बायर्स टू द ट्यून ऑफ 4,021.6 करोड़ रुपीज। डीआईआईज इन फैक्ट वर द नेट सेलर्स टू द ट्यून ऑफ 1,651.45 करोड़ रुपीज इन द इक्विटी मार्केट। कैन वी से दैट द एफआईआईज आर नाउ वंस अगेन बैक इन द मार्केट प्री बजट, एंड व्हाट डू यू थिंक their vision is? Is it short to medium term? Because earlier the news coming in was that they would only enter the market in the month of October onwards, but they seem to be the net buyers right now.
See, FIs by nature, they are short and medium term. Even I prefer more to call them short term, because by nature they are that way. But yes, you're very right that Indian economy is showing some good inherent strength, and because of that strength, it is their confidence has been back into India. It's basically three reasons. Reason number one, continuation of governance, especially with the policy frame. Second, same ministry, which is looking into that that whatever, it is not something like it is a festival in between, and again the governance is continued, and the capital expenditure momentum will be continuing. Because see, even if the political numbers, if you start counting, that may be creating some kind of challenges to government only for some social sensitive issues.
What about
not
debt,
for the capital issues?
What about debt to GDP servicing, debt fiscal deficit? How is this being managed?
That is one concern, I really say. But even if you look into debt to GDP ratio, maximum debt is the domestic debt. See, when you are going to have more on external debt, then in that case, it is a matter of great concern. And external debt is still in, I think, less than 10% of the total GDP. And the internal debt can easily be remit if the income generation is going to be there. But certainly, saying so, a government has to be very careful, because debt service, if in the terms of interest you talk about, is going to be a big burden. One side, if you have a challenge to control your fiscal deficit and your interest burden will not be under control, then that challenge will be very high. So government has to really play very smart that their capital expenditure, even through the borrowings, should continue, but make sure that those borrowings should not go into some of, like, you know, revenue expenditure, that also just to fulfill their welfare dreams, so that it not only principal amount, even interest should become the burden in the future. So government has to be careful.
बिजो, जैसा आपने जिक्र किया कि सरकार बजट में शायद और निश्चित तौर पे ऐसे तरह के संकेत हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय, जो एक लंबी अवधि के लिए होते हैं, आपने जिक्र किया कि जो पॉलिसी में कंटिन्यूएशन है, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों द्वारा संभाले जा रहे हैं जो पिछली बार संभाले गए थे, तो इस पॉलिसी से काफी बेहतरी की उम्मीद तो जगती है, लेकिन कुछ एक जो चुनौतियां या चैलेंजेस हैं, जैसे कि रोजगार सृजन, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार इतनी बड़ी मात्रा में करती है और उसमें निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की जो लागत है, अभी भी जो ब्याज दरें हैं वो रिजर्व बैंक ने स्थिर बनाई हुई हैं, जो बहुत ऊंचे दर पर हैं। और आज भी इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही थी कि गवर्नर साहब ने भी, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने ये कहा कि ब्याज दरों में कटौती की जल्दी उम्मीद न करें, तो इन सब और मुद्रास्फीति चाहे ठीक है मौसमी ही सही, क्योंकि अभी बरसात का दौर है तो खाद्य मुद्रास्फीति में भी चिंताएं जगेंगी जगेंगी, हालांकि वो तात्कालिक ही होंगी। इन सारी चीजों के बीच में जो निजी क्षेत्र से जो पूंजीगत व्यय है उसको बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से सरकार की क्या सोच रही होगी, या वित्त मंत्रालय किस तरीके से उसको डिजाइन कर रहा होगा कि हम जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी निवेश बढ़ा दें।
देखिए, सरकार के पास ये जो कैपिटल एक्सपेंड, जो पूंजी निवेश है, ये एक कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सन है। कंपल्सन क्यों है आपको बताते हैं। देखिए, सरकार एक उम्मीद लेके चल रही है, हर जगह बातें हो रही है कि 2026 तक हम कम से कम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएं, 2030-31 तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएं। तो ये जो जीडीपी का जो नंबर है, ये जो साइज है, ये सिर्फ जीडीपी का साइज नहीं होता है, इसके पर्सपेक्टिव में आपको सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे इसको मैं बोलचाल की भाषा में ये कहूं कि आपने अगर अभी तक 100 अतिथियों की व्यवस्था कर रखी है और सडनली आप कहते हैं कि नहीं, अगले फंक्शन में मेरे पास 200 अतिथि आएंगे, तो आपको सिर्फ 200 अतिथि के लिए ही सिर्फ 200 नंबर से काम नहीं चलेगा। आपको बैठने बिठाने के जगह से लेके और खाना बनाने और उनके सब चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इकोनॉमी उस स्केल को अचीव करना चाहेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस होगी, जो जरूरत 1994-95 में स्टार्ट हो गया था। जब 91 में इकोनॉमी ओपन हुई तो शुरू में क्या हुआ कि इकोनॉमी को हमें सिर्फ ओपन करना था, लेकिन जब आए आपके पास नंबर ऑफ ट्रॉलीज, अगर रोड पे ज्यादा बढ़ जाएंगे, ट्रक्स बढ़ेंगे, तो आपको रोड बड़ा चाहिए, अगर ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी तो पावर जनरेशन ज्यादा चाहिए। तो एक तरफ ये इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उन लोगों को हर तरह की सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और ये तभी संभव होगा जब उसमें आज निवेश किया जाए। क्योंकि इसमें जब आज जो आप निवेश सोचेंगे वो 2-3 साल 4 साल 5 साल में जाकर वो धरातल में आपको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेगा।
लेकिन निजी क्षेत्र इस मामले में, जब सरकार की बार बार की कोशिशें भी थी कि निजी क्षेत्र से भी निवेश बढ़ाया जाए, और वहां पे अगर पूंजी की लागत कम करने में ब्याज दरों की बहुत बड़ी भूमिका है, और ब्याज दरें अगर नहीं होंगी तो क्या आपको लगता है कि
यहां पर मैं भी उम्मीद कर रहा था, इस बार भी रिजर्व बैंक से मैं उम्मीद कर रहा था, नहीं कुछ तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट ही कम कर दें। बल्कि मैं तो फरवरी वाले रिवीजन में ऑलवेज एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि वो लास्ट में होता है, लोग ईयर कवर करने के लिए भी कई बार इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन तो है और ये जरूरी भी है। आपकी बात सही है, यहां पे जो आरबीआई का जो ये एक्सपेक्टेशन है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कारण और इन्फ्लेशन को आगे न बढ़ पाए इसके कारण रखेंगे, यहां पर थोड़ा सा एडवाइस है कि अगर थोड़ा कम हो जाए तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगा, तो फिर इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल,
कुछ माइंडों में इन्फ्लेशन होना भी शायद अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है।
सो जस्ट लुकिंग एट द बजट, इट्स क्लियरली बिजनेस टू B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, द कंपनीज दैट विल बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड valuations in the stock market are being based on that. But if you look at B2C, business to the consumer, they would obviously would want interest rates to be reasonable so they can borrow and consume more. What is the state of consumption? And more importantly, if I would like to refer to the auto index, we saw marginal correction today. What are the sales volume telling you in terms of consumption of passenger cars? Is that a strong indicator of how the economy is looking at in terms of your typical household consumption?
I'll give you 2-3 important points which for a longer period related to budget I had expectations also. First expectation is that government has to make sure that these household sectors, the consumer, should have more disposable income, those who have income. Second, and how it has to be done, that's a very important point. Second important point is that those who don't have income must have the opportunity to generate the income. So those who don't have income should get generated. That is only through that route sustainable development will be a sustainable growth will be possible. Second, more disposable income should be there. Now playing with taxation, playing with interest rate, whether through fiscal or through, it has to be there. It has to be there. That is what really required. And people are really very hopeful for that exercise in this budget. Madam should think of that.
तो क्या ये मानने के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो जो वेतन भोगी कर्मचारी का वर्ग है शायद मिडिल क्लास जो वर्ग है जिसकी आमतौर पर बजट से सीधी सीधी आकांक्षाएं होती हैं कि आयकर की दरों में लाभ या आयकरों की दरों में फौरी तौर पर सीधे सीधे उसकी जेब में कितने अतिरिक्त पैसे आ रहेंगे क्या वित्त मंत्री महोदया इस बारे में शायद उनको कुछ खुश कर पाएंगी
इस बार उम्मीद कर रहे हैं मैडम से इस बार ये उम्मीद है एक्चुअली ये भी ये देखना होगा कि जो टैक्स पेयर्स हैं स्पेशली द मार्जिनल एंड मिडिल इनकम ग्रुप दीज ये टैक्स पेयर को कहीं से डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और अगर ये बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि इन्हीं के बलबूते पे ये टैक्स पेयर के बलबूते पे ही वेलफेयर स्कीम चलती है अगर आप देखेंगे कि 48 लाख करोड़ का बजट में अगर आप 5.5 लाख करोड़ सिर्फ सब्सिडीज और बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं ये तभी संभव होगा जब आपका टैक्स पेयर भी खुशी खुशी टैक्स देता रहेगा
प्लस वी नो दी difficulties faced by the consumer when there is inflationary pressure, but we don't have any disclosure of what is the effect or impact of inflation on businesses because they're all working on margin. So there is yes. clearly a discrepancy there.
Yes, that's true. And that's why it is very important. You know, it's a one point and many gain is if this middle income group is going to get benefit, some incentive in that way. I have a simple disposable income, then in that case, it's a direct benefit to industry also. Because ultimately their consumer base is going to increase. And when consumer base is going to increase, they will be benefited.
Well, let's have a look at our second headline story on foreign exchange. India's forex reserves jumped by $5.16 billion to hit an all-time high of $657 billion. The data shared by the Reserve Bank of India showed today. For the week ended July 5, foreign currency assets, a major component of the reserves, increased by $4.2 billion to $577 billion as per the data. Gold reserves increased by $904 million, while the special drawing rights were up by $21 million during the week. The Apex Bank showed very briefly, gold prices have gone up, so clearly valuations have gone up in terms of our holdings right now. Foreign exchange going up, reason?
Foreign exchange, see, basically you look into that the way right now TCS result and Infosys result and Wipro result has been indicating and even otherwise, our export is really increasing to a greater extent. Defense, which where we were effectively always counted as one of the importer, now we are turning towards exporter and five big economies are also now buyer to from India. That simply indicates that our sales are increasing cross-border and that will be giving a good boost to the forex. And that's why you will find out for a good number of period now, rupees dollar is also more or less as a range bound instead of having rupees sliding to a greater extent. This simply indicates that yes, strength is there, and I'm very hopeful with this cross border sellings. इन इंडियन मार्केट
नजर डाल लेते हैं एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों पर एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मिला जुला दौर रहा हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मामूली बढ़त से बंद हुआ जबकि जापान का निकेई 2.5% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा लंदन जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए
Moving on to the U.S. stock market, U.S. stocks closed mostly lower yesterday as investors sold high-flying tech stocks and bought small caps, real estate stocks and other rate-sensitive sectors of the market. The Dow Jones Industrial Average was up by 0.14%. However, Nasdaq slumped by 1.95% and S&P 500 fell by 0.88%. So the tech sell-off right now has pushed Nasdaq down by 2%. But the news is also saying that rate-sensitive sectors, we're seeing a lot of buying in the U.S. stock market. What does it tell us about the Fed Reserve's policy decisions on the discount rate, which is the repo rate for all intents and purposes? Are they going to cut it?
Not immediately. That is not. They are not giving any signal. Not before September. That is what talk is there. And they want to curtail, especially the inflation is yet not in case. So elephant is out. And then in that case, it is not the way they will be immediately acting upon. And the moment they will act upon, it will be a green signal to our economy also to, you know, respond accordingly. So not only US, entire world is watching how they are going to have it, because European Central Union is also looking into that way. Yes.
क्या अमेरिका भी, क्योंकि वहां पे भी कुछ महीनों के बाद चुनाव हैं, तो क्या चुनावी दबाव के कारण इस तरीके के कदम को टालने की कोशिश कर रहा है या उस दबाव से को पार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्याज दरें या वहां की अर्थव्यवस्था में जो एक जो उधार का भी एक दबाव है वो भी बहुत बड़ा है.
बहुत बड़ा दबाव है ये दबाव तो देखिए पिछले दशक से है उनके ऊपर.
बल्कि
ये दबाव तो उनके पिछले दशक पे है, बल्कि यहां तक भी सुनने में मिलता है कि इस बार सिग्नेचर नहीं होगा, साइन नहीं होगा, और आगे कैसे खर्च चलेगा उनका. और फिर बाद में जबकि सबको मालूम है कि ऐसा तो होगा नहीं, खर्च तो करना ही है,
अमेरिका डॉलर छाप करता है.
उनके यहां क्वांटिटेटिव ईजिंग है. देखिए अमेरिका के पास जो है, हम जो फिगर पढ़ते हैं तो उनको ब्लैक को ब्लैक नहीं पढ़ना चाहिए. और कारण मैं बताता हूं ब्लैक को ब्लैक नहीं पढ़ने का, व्हाइट को व्हाइट नहीं पढ़ने का, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी है. और जैसे ही ग्लोबल करेंसी होती है तो उनके पास स्ट्रेंथ होता है. कोई भी दूसरी इकोनॉमी, साधारण इकोनॉमी की बात करता हूं, इवन एडवांस इकोनॉमी में भी अगर दूसरी इकोनॉमी अगर एक्सेसिव मोनेटाइज कर देती है अपने करेंसी को, तो उसके करेंसी डिप्रिसिएट करेगा. आप पिछले दशक से देखिए, खास करके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद देखिए, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एक्स्ट्रा पंप करते रहे मार्केट में, और फिर भी डॉलर एप्रिसिएट होता रहा सारे मेजर करेंसीज के अगेंस्ट में. ये इंडिकेट करता है कि उनका स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ इनहेरेंट नहीं है, ग्लोबल नेचर का है. इसलिए उनके स्टैटिस्टिक्स को, उनके डेट को, उनके इन्फ्लेशन को मैं बहुत नॉर्मल थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक स्टाइल में नहीं देखता.
Well, let's have a look at the oil market now. Bijoy, Brent crude oil has been trading higher today. Brent crude increased by 0.74% to $86.03 per barrel. U.S. West Texas Intermediate is over 1% to $83.46 a barrel when reports last came in. Your take on the oil market, who's controlling it right now? Is it OPEC or the U.S.?
A combination is normally considered now. It's a very new term, is really OPEC plus. That is the way people are looking upon. And second half of this year is expected to have little upward revision. And that is because of increased demand. That's the one expectation. Second is that supply is not going to have that way because they are curtailing the supply. So combination of the two is expected to have little on upper side, but not too much of that. Marginal upward revision in the second half of the year is going to be expected. And even some seasonal factor is also there. Winter is expected to be little more chilly, and that's way now we can expect that more demand will be there for oil.
नेफेडाल ने सराफा बाजार पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.4% की गिरावट से 73,047 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी भी 1.5% के नुकसान से 92,813 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक बाजारों में सोना 0.6% की गिरावट से $2,406.70 प्रति औंस के स्तर पर रहा. चांदी भी 2% के नुकसान से $31.03 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. बहुत संक्षेप में विजय, सोना चांदी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, $2,400 को पार करना सोने में अभी कितनी तेजी की उम्मीदें जगाता है, या इसमें अब कहीं दबाव हो गया? लेकिन चांदी ने जितनी तेजी से छलांग लगाई है इसके मुकाबले $31 तक, क्योंकि $20-22 के पास से सोचते थे, वहां से $31 पर अगर आती है तो कहां नजर जाएगा?
अभी भी सोना के मामले में ये क्लियर कट है कि सोना जो है वो अभी थोड़ा और पोटेंशियल रख रहा है. 2600 के आसपास की तक की उम्मीद की जा रही है. और यहां भी जो अगर आप भारतीय बाजार में देखें तो अगर भारतीय रुपये के टर्म में अगर हम करें 10 ग्राम तो वो भी 75,000 क्रॉस करने की उम्मीद में है. तो सोना में चमक बाकी है.
जी विजय, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
धन्यवाद.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Domestic benchmark indices end strong today. Sensex and Nifty rise over 0.75% each to hit fresh closing highs. Foreign exchange reserves jump by $5.16 billion to $657.16 billion as of July 5, says the RBI data. And crude oil prices trading higher today. Brent crude increases by 0.74% while WPI goes up by over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Master Sutra.